चैप्टर थ्री, आज तारीख कौन सी हो गई? सेकेंड फरवरी, सेकेंड फरवरी चैप्टर थ्री। कुछ कुछ बात आज हम बच्चों करेंगे इससे जुड़ी हुई कि ये जो इंटरनेट है ये आखिर चलता कैसे है, इसका इसका संचालन कैसे होता है, यही कैसे चलता है, इसमें क्या दिक्कतें हैं और क्या और आगे किया जाना चाहिए। तो पहली बात, इंटरनेट टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड माने इसकी जो इंटरनेट की तकनीक है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अक्सर ये आपने पढ़ा भी है और समझते हैं आप इसको, कि जो इंटरनेट है वो कंप्यूटरों का तंत्र है, एक दूसरे से जुड़े हुए तमाम कंप्यूटर्स हैं जो काम मिलके करते रहते हैं, जो व्यवसायों को, शैक्षणिक संस्थाओं को, सरकारी संगठनों को या एकाकी व्यक्तियों को आपस में जोड़ते हैं। ये हुआ इंटरनेट, और इंटरनेट के आधार पर दोस्तों हमारा ये चलता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक सूचना का समूह या सूचनाएं बहुत सारी जो इंटरनेट के माध्यम से हम एक दूसरे को देते लेते रहते हैं, कहीं सुरक्षित कर पाते हैं, कहीं से ले पाते हैं, किसी को दे पाते हैं, तो वो हमारा हो गया वर्ल्ड वाइड वेब। जो इंटरनेट का एक सबसे ज़्यादा प्रमुख इस्तेमाल है, उसकी सेवा है, और जो बहुत सारे पेजेस माने जिस जो इंटरनेट पर आप देखते हैं, मतलब पेज देखते हैं, वो वर्ल्ड वाइड वेब आपको देता है, और इन पेजेस को, इन सूचनाओं को उठाना, रखना, संभालना, ये सब वर्ल्ड वाइड वेब करता है। कैसे शुरू हुआ? तो पहला है आविष्कार का चरण, आविष्कार का चरण, इनोवेशन फेज, आविष्कार का चरण 1964 से 1974 के बीच में। तो इस समय क्या हुआ कि इंटरनेट के जो आधारभूत जो क्या कहते हैं तत्व थे, आधारभूत बातें थी, अवधारणाएं थी, वो हमारे सामने आने लगी कि कैसे दो कंप्यूटरों को जोड़ा जाएगा, कैसे ज़्यादा कंप्यूटरों का नेटवर्क बनाया जाएगा, क्या क्या उसके लिए आवश्यकताएं होंगी, ये सारी बातें 1964 से 1974 तक हुई। इसके बाद जब अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से इसको विकसित किया, तो इसको एकीकृत किया गया, जो दूसरा चरण आया जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन फेस या संस्थागत चरण। ठीक है, जहां हमने क्या किया, देखा कि अब जो भी काम हो रहा है उसमें देखा गया कि सबसे अच्छा तरीका क्या है और किसको अब सभी लोग अपना लें, सब लोग इसी तरह से करने लगे तो बेहतर होगा, उसको हम कहते हैं 1975 से 95 के बीच में, जहां बहुत सारे कोष बने, पैसा उपलब्ध कराया गया और चीज़ों को समरूप बनाया गया, एक जैसा बनाया गया। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं? शुरू में जब भी कोई चीज़ बनती है तो हर आदमी अपने अपने ढंग से बनाने लगता है, फिर जब सब लोग बनाने लगते हैं तो फिर देखते हैं कि भाई एक जैसी बनाओ, जैसे बल्ब बना तो बहुत सारे कंपनियों ने बल्ब बनाना शुरू कर दिया, अब ये हुआ कि भाई सब बल्ब एक दूसरे में जुड़ जाएँ, होल्डर में लग जाएँ, तो फिर एक जैसा बनने लगा, तो वो संस्थागत उसका स्वरूप आया, चरण आया। तीसरा हुआ दोस्तों कमर्शलाइजेशन फेज यानी व्यावसायिक चरण, जहां हम इसको अब व्यावसायिक दृष्टि से इस्तेमाल कर पा रहे हैं 1995 के बाद वाला और आज तक। यहां निजी कंपनियों ने अब इस कार्य को करना शुरू कर दिया, और जो इंटरनेट की बैकबोन है और जो स्थानीय सेवा है, बैकबोन और स्थानीय सेवा दोनों को ही निजी कंपनियों ने प्रदान करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये बैकबोन क्या है और स्थानीय सेवा क्या है, इसकी बात अभी हम करते हैं, इसमें बहुत परेशान मत होइए। तो ये जो इंटरनेट है जिसको हम कहते हैं कि एक तंत्र है, पूरा नेटवर्क है, तंत्र है, ये आखिर कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे बनता है? तो इसमें दोस्तों एक होता है आईपी एड्रेस, दूसरा होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, माने कैसे सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा, तो इसको TCP IP ही लिखिए, हिंदी में परेशान मत होइए, TCP IP ही माना जाएगा। और इसकी वजह से इससे क्या होता है कि उपभोक्ताओं को सेवाएं दी जाती हैं। अब आइए देखें कि इसके जो तीन मुख्य इसकी तीन मुख्य अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो क्या हैं। पहले इसको हम बताते हैं आपको, तो फिर आपको और समझ में आएगा। इसको बताने के लिए हम आपको एक एक दूसरा वाला भी अभी दिखाते हैं, दूसरा पावर पॉइंट दिखाते हैं, तो उसको देखकर आपको बहुत तेज़ी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। एक मिनट दिखाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले जब इंटरनेट नहीं था तो कैसे व्यापार होता था, उसको हम लोग कहते हैं सिल्क रूट, जिसकी मदद से सिल्क सिल्क कपड़ा समझते हैं, वो चाइना से यूरोप तक जाता था। ये लाल लाल जो है इसको सिल्क रूट कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कैसे बदला, अब ये बदल के ऐसे बन गया, पूरा आसमान में तंत्र बन गया, जाला हो गया, सब आसमान में जुड़ा हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से क्या जुड़ गया, ठीक है। या समुद्र के नीचे केबल बिछे हुए हैं, ये सबमरीन्स हैं, ये सब देख रहे हैं, तमाम तार जुड़े हुए हैं, इन्हीं से सब सूचनाएं और व्यापार हो रहा है। तो ये सिल्क रूट टू ई रूट है। हम असली बात क्या करना चाह रहे हैं, वो TCP/IP की करना चाह रहे हैं। ये क्या होती है इसको हम आपको बताते हैं, एक सेकेंड, इससे समझ में आएगा कैसे कंप्यूटर एक दूसरे से बात करें, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि इस कमरे में हमारे पास कितने कंप्यूटर हैं, 20 कंप्यूटर, ठीक है। इसको इसको समझने की ज़रूरत है, अभी लिखने पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और हर कंप्यूटर का क्या नंबर है, एक नंबर है, एक से लेकर 20 तक, ये समझ गए। अब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर अगर कोई सूचना भेजना चाहें तो हमें मालूम है कि कंप्यूटर नंबर 2 कंप्यूटर नंबर 18 से बात करना चाहता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ये समझ में आ रहा है। इसी तरह से, लेकिन ये बगल वाले कमरे में भी हो, यू हैव मेनी रूम्स ऑन द सेम फ्लोर, इसी तल पर, भूतल पर बहुत सारे कमरे हैं और हर कमरे में इसी तरह से कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो अब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे बात करें। तो अब ये कमरा नंबर क्या है, 8, यही ना, और कमरा नंबर 1 भी है, 2 भी है, तो हर कमरे में जो कंप्यूटर लगे हुए हैं उनको कहें, इस कमरे में 20 लगे हुए हैं मान लीजिए, तो यहां कहें 8.2 का मतलब क्या हुआ, 8 नंबर कमरे का दूसरा कमरा। बहुत सिंपल बात है, समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। तो अब इसको हम कहेंगे एवरी रूम विल ऑल्सो हैव अ नंबर 1 to 2, नाउ यू विल आइडेंटिफाई कंप्यूटर नंबर 11 फ्रॉम रूम नंबर 9, कुछ भी नाम ले लीजिए, तो 9.11 का मतलब क्या हुआ, 9 नंबर कमरे का 11वां कंप्यूटर, ये बच्चों समझ गए, ठीक है। अब आइए इसको बढ़ाते हैं, लेट अस इंक्रीज द स्कोप ऑफ टू एकोमोडेट 999 कंप्यूटर रख लेते हैं, हो सकता है ना बड़ा हॉल हो, 999 कंप्यूटर हो, और उसी तरह से 999 कमरे हो सकते हैं कि नहीं, हो सकते हैं, हो सकते हैं, तो फिर नंबर कैसे होगा, ठीक है बेटा, 9वें कमरे का 11वां कंप्यूटर, बात वही है जो यहां थी, लेकिन हमने इसकी स्कोप बढ़ा दिया, इसकी इसका क्षेत्र बढ़ा दिया, हम जब चाहेंगे 999 कमरे बना देंगे, जब चाहेंगे 999 कंप्यूटर एक कमरे में लगा देंगे। अब आप समझ गए, 999 कमरों में 999 कंप्यूटर, हर कमरे में इतना कंप्यूटर, कितना कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ने लगा, ये तो बवाल हो गया ना कि नहीं हो गया, अब दिमाग घूमने लगा ना। अब इसी तरह से हम ये कहें कि ये एक शहर में या एक बिल्डिंग में हो गया, यू मे हैव सेवरल फ्लोर्स इन बिल्डिंग, तो हर फ्लोर के लिए एक नंबर लगा दें, ठीक है। तो अब कहें कि फ्लोर नंबर 1, तो अब नंबर कैसे रखें? 1.9.11। ये समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इसी तरह से कर दे 999.999.999। ठीक है, फिर हम ये कहें कि हर शहर में अलग अलग हो जाए, तो फिर 999.999.999.999। ये हो गया आईपी एड्रेस, हर उपकरण का एक नंबर जिसको हम कहते हैं कि ये आईपी एड्रेस है। ठीक है ये बच्चों, लेकिन 999 तक नहीं जाता, ये 256 तक ही जाता है ऊपर, 256 अपर लिमिट है इसकी। ठीक है, तो 205.46.117.104 ये कहाँ तक रहता है? 0 से 255 तक, 250 जो 256वां है वो 256वां नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो है, क्षमता हमारे पास कितनी है? 256 की। तो अगर जीरो को भी गिनेंगे तो 256 हो जाएगा कि नहीं, ये बता पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, जीरो भी तो एक गिना जाएगा ना, तो 255 ही तक जाएगा, अगर 256 करेंगे तो 257 हो जाएगा। ठीक, तो ये इस तरह से इसका आईपी एड्रेस हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो जब आप कंप्यूटर पर कुछ काम करते हैं तो आपको अक्सर नंबर दिखने लगता है, आईपी एड्रेस, जो पुलिस पकड़ लेती है कि कहाँ से भेजा गया, ये चिट्ठी कहाँ से भेजी गई, तो वो आईपी एड्रेस पकड़ लेती है। ठीक है, कौन से आईपी एड्रेस से आई, मेल पकड़ लिया। ठीक, अब बच्चों इस पर सामान कैसे भेजा जाए, इस पर कोई भी सामान कैसे भेजा जाए? तो आइए मान लेते हैं कि ये बच्चन साहब की तस्वीर है, इसको हम भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी है, और ऐसे मान लीजिए हम ये कहें कि इस बच्चन साहब की तस्वीर को, ये बड़ा सा पोस्टर, खूब बड़ा सा हमने यहाँ बना दिया, और इसको हम ले जाना चाहते हैं सिविल लाइंस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस चौराहे पर लगाएंगे, तो ले जाने बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो इसीलिए इसको क्या किया, टुकड़ों में बांट दिया, छोटा छोटा टुकड़ा बना दिया। ठीक है, हर टुकड़ा एक एक बच्चा लेके भागो अपनी मोटरसाइकिल पे, जल्दी से पहुंच जाए, जल्दी सुभाष चंद्र बोस चौराहे पर पहुंच जाए। ठीक है, वहां पर फ्रेम बना हुआ, वहां टांग देंगे तो बढ़िया बच्चन साहब दिखने लगेंगे। तो कौन सा टुकड़ा कहाँ जाएगा? पैकेट, ये पैकेट हो गया, छोटा छोटा पैकेट हो गया ना, कौन सा पैकेट कहाँ जाएगा? तो पैकेट का कोई नंबर हो, तो ये देखिए पैकेट का नंबर हो गया, ये नहीं हो गया, हो गया ना, ये क्या हो गया, B2, ये B3, ये सब लग गया। लोग कह रहे हैं, अरे बच्चन साहब की नाक तो लाओ भाई, नाक किसके पास है, B3 किसके पास है, B3 लगाओ तो बच्चन साहब की नाक भी आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये बच्चों मटेरियल जाता है, आपकी ईमेल जाती है, आपकी जो वेबसाइट चलती है वो इसी तरह से चलती है, छोटे छोटे पैकेट्स हैं वो इंटरनेट से आते रहते हैं और तब वो काम करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब इसके बाद एक चीज़ होती है, डोमेन नेम सिस्टम। अब ये डोमेन नेम सिस्टम क्या है, कि जो भी वेबसाइट है वो तो बच्चों आईपी एड्रेस से पकड़ी जाएगी, जो भी वेबसाइट है वो कहाँ से मिलेगी, आईपी एड्रेस से मिलेगी। अच्छा, आईपी एड्रेस को याद करना बड़ा मुश्किल है, जैसे आप मेरी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो एक्चुअली एक आईपी एड्रेस पे जाती है। ठीक है, आईपी एड्रेस क्या आपको मालूम है? आईपी एड्रेस तो मालूम नहीं, कि मेरी वेबसाइट का आईपी एड्रेस मालूम है, मालूम है, लेकिन कंप्यूटर तो नंबर से ही चलेगा कि नहीं चलेगा? कहीं भी होगा, सिंगापुर में होगा कि न्यूयॉर्क में होगा कि सिलिकॉन वैली में होगा, जहां भी होगा उसका कोई नंबर होगा। तो इस आईपी एड्रेस को कैसे पकड़ पाए, इसके लिए बच्चों डोमेन नेम होता है। क्या होता है? डोमेन नेम। मेरा डोमेन नेम क्या है? कोई वेबसाइट मेरी गया है कि नहीं गया? क्या है? हाँ, क्या है? कॉम नहीं है बेटी, अरुण कुमार डॉट इन है। ठीक है, या अरुण के डॉट कॉम है, दोनों है, अरुण के डॉट कॉम या अरुण कुमार डॉट इन। ठीक है, ये डोमेन नेम हो गया। तो अब ये डोमेन नेम आपने टाइप किया, अरुण कुमार डॉट इन टाइप किया, तो अब वो ढूंढे कि कौन से कंप्यूटर में इसका मसाला रखा हुआ है, मैटर रखा हुआ, कहाँ पेजेस हैं। तो एक होगा डोमेन नेम सर्वर, लिख लीजिए DNS, डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, तो उस पर जितने भी दुनिया भर के डोमेन नेम्स होंगे, जैसे arunkumar.in, arunk.com, munirba.com, ठीक है, वो सब वहां पर लिस्ट बनी होगी, कंप्यूटर में लिखे होंगे, एक्सेल में जैसे शीट खुली हो, और उसके आगे उसका नंबर लिखा होगा कि कौन से नंबर पे ये मिलेगा। तो जैसे ही आप टाइप करते हैं arunk.com, तो वो तुरंत नंबर ढूंढ लेता है डोमेन नेम सर्वर से, और उस नंबर वाली कंप्यूटर पर जाकर वेबसाइट को डाउनलोड करता है। ये समझ गए? तो तीन चीजें हुई दोस्तों। एक हुई पैकेट स्विचिंग, हमने समझ लिया बच्चन साहब की तस्वीर एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगी। दूसरा हुआ TCP/IP कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल, माने TCP/IP के माध्यम से कैसे एक स्थान से दूसरी जगह सूचना जाएगी। और तीसरा क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। ये क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग क्या है, क्लाइंट सर्वर जो संगणना है वो कैसे होती है कि एक प्रमुख कंप्यूटर हो गया, उसको कहते हैं सर्वर, ठीक है, सारा डेटा उसी पर रखा हुआ है, सब सॉफ्टवेयर उसी पे है। आपको कोई कंप्यूटिंग करनी है, कोई संगणना करनी है, आपको कुछ कंप्यूटर से काम करना है, तो आप अपने ब्राउजर से उस सर्वर पर जाएंगे। आप में से कितनों ने रेल का रिजर्वेशन कराया है या कुछ किया है इंटरनेट पे, कुछ किया है हाथ उठाइए, कुछ लोगों ने किया है, टिकट विकट बुक किया हो, कुछ खरीदा हो, कुछ बैंक से निकाला हो, कुछ किया है ना, क्या किया है? टिकट, कौन सा टिकट? रेल का टिकट, बहुत अच्छा। तो अब ये रेल का टिकट जब आप बुक करते हैं तो आप irctc.co.in पर जाते हैं, तो वो सर्वर हो गया, ठीक है। आप जैसे ही irctc.co.in पर जाते हैं तो वो सर्वर हो गया, आप क्लाइंट हो गए। आपके पास irctc.co.in से छोटा सा सॉफ्टवेयर आया, डाउनलोड हो गया, आपके कंप्यूटर पे आ गया। अब वो सॉफ्टवेयर आपसे सूचना लेगा और सर्वर यानी बड़े कंप्यूटर को देगा। इसको कहते हैं क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। क्या कहते हैं? क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, या संगणना, जो भी आप इसको हिंदी में कहते हो, ठीक है। तो दिस इज, इस तरह से ये क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग होती है। तो जैसे आप ऑनलाइन खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं, मिंत्रा से खरीदते हैं, जबांग से खरीदते हैं, बुक माई शो करते हैं, कुछ भी करते हैं, बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं, ये सब ऑनलाइन हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग से। बड़ा कंप्यूटर कहीं लगा हुआ है, वो सर्वर है, छोटा कंप्यूटर आपका वाला है, वो क्लाइंट है, एक दूसरे से ये लोग बात करके काम करते रहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया TCP/IP वगैरह वगैरह, अब ये लेयर्स पर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको बताया कि डोमेन नेम क्या है, ठीक है, फिर मैंने आपको बताया डोमेन नेम सिस्टम कैसे काम करता है, फिर मैंने आपको बताया कि ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है, ये है www.azimuth.interaction.interactive.com, या आप मेरी वेबसाइट पे जाना चाहें तो www.arunkumar.in या arunk.com। तो ये हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इतनी बात समझ रहे हैं? ओके, ये मैंने आपको बता दिया क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग क्या होता है? एक कोई बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर है जो क्लाइंट हो जाता है, माने हम सबका हाथ में जो है वो शक्तिशाली ही है। आजकल आपका मोबाइल फोन भी, स्मार्टफोन भी शक्तिशाली कंप्यूटर है, उसको छोटा मत मानिए। और एक बड़ा कंप्यूटर है सर्वर, जो क्या करता है, फाइलों को स्टोर करता है, सॉफ्टवेयर को स्टोर करता है, और एक्सेस टू प्रिंटर, माने बहुत सारे और उपकरणों में आपको जोड़ता है, उन उपकरणों में आपको एक्सेस देता है, आपको उनकी आपकी पहुंच वहां तक बना देता है। अब जो नया क्लाइंट आ गया हमारे पास, वो आ गया हमारा मोबाइल फोन। ये मोबाइल फोन कैसे काम कर रहा है? स्मार्टफोन है जैसे हम लोग, आप सब समझ रहे हैं, और ये सर्वर से जुड़ के काम कर रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? ये हम लोगों ने पहले सेमेस्टर में पढ़ा है, तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में परेशान मत होइए। अब आइए देखें अगली बात कि आज का इंटरनेट क्या है। इंटरनेट टुडे, आज का इंटरनेट लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए, आज का इंटरनेट, इंटरनेट टुडे, ठीक है, आज का इंटरनेट या इंटरनेट टुडे। आज के इंटरनेट में क्या खास बातें हैं, क्या है आज का इंटरनेट है, ठीक है। हमारा इंटरनेट बहुत तेजी से विकसित हुआ, क्यों विकसित हुआ, क्योंकि वन क्लाइंट सर्वर संगणना हुई, ठीक है। टू, इसकी चार लेयर्स हैं, इसमें चार लेयर्स हमने बनाई हैं, क्या बनाई हैं आप लिख लीजिए। नंबर वन नेटवर्क लेयर, नेटवर्क स्तर, चलिए नेटवर्क स्तर। नंबर टू ट्रांसपोर्ट स्तर, ट्रांसपोर्ट स्तर ही लिखिएगा, ठीक है। नंबर थ्री मिडिलवेयर स्तर, मिडिलवेयर स्तर, और नंबर चार एप्लीकेशन स्तर। ठीक है, अब ये देखिए कैसे काम करता है, मैं इसको समझाता हूं। ये है देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये चार लेयर्स हैं, ठीक है। सबसे ऊपर क्या है, ये है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन का क्या मतलब हुआ कि वह सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से आप काम करते हैं, जैसे ईमेल, जैसे बैंक का जो सॉफ्टवेयर आपको दिखता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन। जैसे वेब ब्राउजर, जैसे YouTube का मीडिया प्लेयर, ये सब में जाकर ही तो आप फिल्म देखेंगे, गाना सुनेंगे, तो इसको हम कहते हैं दोस्तों एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, लेयर फोर। और ये सब दिखा कैसे रहा है, क्योंकि कहीं तार से जुड़ा हुआ है लेयर वन, नेटवर्क टेक्नोलॉजी वाला लेयर, ठीक है, जो वाकई तार में सब डेटा लाएगा। जो भी आपको फिल्म सुनाई पड़ रही, दिखाई पड़ रही है, जो गाना सुनाई पड़ रहा है, या जो आप पढ़ पा रहे हैं, जो चित्र दिख रहा है, वो तो 0101 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जानते हैं ना कि 0101 में आता है, डिजिट्स में आता है। तो वो डिजिट्स में आएगा कैसे, वो लेयर वन से आएगा, ठीक है, ये बात समझ रहे। तो फिर लेयर टू क्या कर रही है, वो यही आईपी एड्रेस को दे रही है, ट्रांसफर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल दे रही है। लेयर वन जो सबसे नीचे है वो सिर्फ तारों का जाल है, उसके ऊपर वाली लेयर टू क्या कर रही है, इन तारों में से कौन से तार को इस्तेमाल करके सूचना भेजी जाए, ठीक है, ये लेयर टू हो गई, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई। लेयर चार क्या कर रही है कि आपको वो सुविधा दे रही है, ठीक है। तो लेयर तीन क्या कर रही है, लेयर चार और दो के बीच में मध्यस्थ का काम कर रही है, लेयर चार और लेयर दो के बीच में मध्यस्थ का काम कर रही है, इसीलिए उसको कहते हैं मिडिलवेयर सर्विसेस, ठीक है, इतनी बात समझ रहे हैं। तो बच्चों ये चले कैसे, अब सवाल ये है कि ये जो पूरा तंत्र है इतना बड़ा, ये आखिर कैसे चले, ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। अभी हम आपको लिखवा भी देंगे, अभी पहले समझ लेते हैं। इस कमरे में बिजली आ रही है, कहां से आ रही है, इस स्विच बोर्ड से आ रही है। क्या इतने सारे तार सब स्विच बोर्ड में आ रहे हैं, अंदर से तो आ रहे हैं, क्या बाहर भी इतने ही सारे तार जा रहे हैं, एक तार जा रहा है कि नहीं, एक तार बिजली इस कमरे तक लाया और उस तार से बहुत सारे तार जोड़ दिए गए, तो ये सब बिजली, पंखा, एलसीडी सब चलने लगा कि नहीं। अच्छा, ये जो तार इसमें आया इस कमरे तक, ये तार बिजली कहां से पाता है, मेन स्विच से, ठीक है। तो मेन स्विच से हर कमरे में जा रहा है बिजली कि नहीं जा रहा है, तो मेन स्विच में कहां से आ रहा है, पोल से आ रहा है, ये समझ रहे। तो पोल में कहां से आ रहा है, ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर में कहां से आ रहा है, पावर हाउस से आ रहा है, पावर हाउस में कहां से आ रहा है, पावर ग्रिड से आ रहा है, ठीक है। पावर ग्रिड को कहां से आ रहा है, जब बिजली घर से आ रहा है, जहां जहां से बिजली बनती है वहां से आ रहा है, ठीक है, करछना से आ रहा हो सकता है, ठीक है, ये समझ गए। तो ये जो पावर ग्रिड है, मैंने जो पूरा तंत्र है कि अब यहाँ से बिजली वहाँ ट्रांसफ़र कर दो, तो हैंडल घुमाया बिजली कहीं की कहीं जाने लगी। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं। सबसे नीचे है कैंपस एरिया नेटवर्क, माने आप इसको ले सकते हैं, एरिया को हिंदी में क्या कहेंगे,
क्षेत्र।
हाँ ठीक है, तो और कैंपस को प्रांगण। वाह वाह क्या बात है, प्रांगण क्षेत्र संतंत्र, तब तो हो गया प्रांगण क्षेत्र तंत्र हो गया। नेटवर्क तंत्र हुआ कि नहीं हुआ, बस हो गया हिंदी में प्रांगण क्षेत्र तंत्र। ठीक है, तो अब ये प्रांगण क्या है, ये हमारा प्रांगण है कि नहीं है। अच्छा, अब वो भी प्रांगण है कि नहीं है, हो सकता है हमारा ही प्रांगण है, और आगे देखें तो पूरा विश्वविद्यालय हमारा प्रांगण है। तो जैसे जैसे हम एक प्रांगण को बढ़ाता है, जितना हम कर पाए उसको हम कहेंगे प्रांगण तंत्र, प्रांगण क्षेत्र तंत्र, इसको हम कहेंगे कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, बात समझ रहे हैं। ये जो प्रांगण तंत्र बना, इसको किसी उच्च स्तरीय तंत्र से जोड़ना होगा कि नहीं, जैसे बिजली घर आपने देखा, तो वो कैसे जुड़ेगा, आईएक्सपी से जुड़ेगा, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। ठीक है, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, अब एक्सचेंज को क्या कहेंगे, विनिमय, तो इंटरनेट विनिमय बिंदु। ठीक है, इंटरनेट विनिमय बिंदु। ठीक है, तो अब ये आया इंटरनेट विनिमय बिंदु, जहां प्रांगण क्षेत्र तंत्र बड़े इंटरनेट से जुड़ेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या आया, बैकबोन। ठीक है, बैकबोन को क्या कहें, मेरुदंड ही कह देते हैं, क्या कहते हैं,
रीढ़ की
हड्डी, मेरुदंड, वही मेरुदंड कुछ और होता है क्या, वही होता है। ठीक है, ठीक है, तो जो इंटरनेट है उसका मेरुदंड माने बैकबोन, रीढ़ की हड्डी कहीं होगी जो सबसे बड़ा होगा। तो जो हम लोगों ने बिजली की दृष्टि से देखा, तो जो हमने कहा पावर ग्रिड, जो आप रेल से जाते हैं गाँव में जाते हैं कभी कभी देखते हैं बड़ा बड़ा तार, इतना ऊंचा ऊंचा टावर देखते हैं कि नहीं देखते हैं, जिस पे लिखा रहता है कितना, 11,000 वोल्ट है, 36,000 वोल्ट, बताइए इनका तो गांव और बड़ा हो गया, 36,000 वोल्ट वाला है, मतलब बहुत बहुत पावरफुल तार लगे होते हैं। ठीक है, 36,000 वोल्ट, 40,000 वोल्ट, तो वो बच्चों हुआ क्या, हुआ मेरुदंड, बैकबोन, वहाँ से छोटे बिजली घर को आई, फिर वहाँ से कहीं और आई, फिर ट्रांसफार्मर तक आई, फिर ट्रांसफार्मर से घर में आई, फिर घर से कमरे में आई, फिर घर से कमरे में आई तो ट्यूबलाइट तक गई। ठीक है, ऐसे ही ये इंटरनेट नेटवर्क चलता है, डन। इसको कहते हैं इंटरनेट तंत्र आर्किटेक्चर, क्या कहते हैं, ठीक है आर्किटेक्चर लिख लो। ठीक है, डन। अब ये हमने दिखा दिया, बता दिया आपको कि ये जो कोई भी तंत्र है, यानी या तो ये वाला या ये वाला या हो सकता है ये वाला भी, जो ये सुविधाएं प्रदान करेगा उसको दोस्तों कहेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता। ठीक है बच्चों, उसको कहेंगे क्या कहेंगे, इंटरनेट सेवा प्रदाता। ठीक, अब सवाल यह है कि इसको चलाता कौन है, इसका मालिक कौन है, सवाल है कि नहीं। तो दोस्तों इसके इसके इतने सारे चलाने वाले हैं, मालिक कोई नहीं, मालिक कोई नहीं है। कोई चाहे कि मैं इंटरनेट बंद कर दूंगा तो इंटरनेट बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। भारत सरकार चाहे कि इंटरनेट बंद कर देंगे तो हो सकता है हिंदुस्तान में बंद कर दे, लेकिन सैटेलाइट फ़ोन नहीं बंद कर पाएगी कि बंद कर देगी, सैटेलाइट तो चल ही रहा है। ठीक है, तो कोई भी इसका एक मालिक नहीं है, ये तो सार्वजनिक है। जैसे हवा है, हवा को रोक लीजिएगा, हवा कैसे रोक लीजिएगा, बारिश को रोक लीजिएगा, कहीं बादल ना जाए जब तुम्हारे यहाँ, ऐसा हो सकता है कि हम तुम्हारे यहाँ बादल नहीं आने देंगे, नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही इंटरनेट वो अपना चल रहा। ठीक है, तो इतने सारे संगठन इसको मॉनिटर करते हैं, इसको चलाते हैं, अब आप ज़्यादा परेशान मत होइए, अगर पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ लीजिएगा। मैंने किताब एक की व्यवस्था कर ली है, अभी सेक्शन ए के बच्चों को दी है, वो सोमवार को मुझे वापस कर देंगे तो मैं आप लोगों को दे दूँगा। ठीक है, हमारी आपकी अगली मुलाकात होगी अगले बृहस्पतिवार को, कल मैं छुट्टी पर हूँ। ठीक है, तो कल हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो रही है, कब होगी? अगले बृहस्पतिवार को। और आपको जो टेस्ट देना है वो असाइनमेंट दे दूँ? ठीक है, तो आप लिख लीजिए ई कॉमर्स की संभावनाएं। ई कॉमर्स की संभावनाएं, ठीक है, और इसके आगे कुछ जोड़ना चाहे तो भारत में ई कॉमर्स की संभावनाएं। ठीक है, 500 शब्द बेटा, उससे ज्यादा हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, पढ़ना भी तो पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? थर्सडे को, ठीक है, अगले बृहस्पतिवार को सबमिट करना। ठीक है बच्चों, बहुत परेशान मत होइएगा, बहुत खर्चा वर्चा मत करिएगा, A4 साइज़ का पन्ना लीजिए, ऊपर नाम लिखिए, रोल नंबर लिखिए, भारत में ई कॉमर्स की संभावनाएं लिखिए, जमा कर दीजिए। ठीक है, एक एक साइट पर 200 शब्द आ जाते हैं, दूसरी साइट पर भी 200 शब्द आ जाएंगे, हो गया 500 शब्द। ठीक है, अरे बेटी तो चलो फिर 4 पन्ने में लिख लेना। हम तो लिखते तो एक पन्ने में 200 शब्द आते हैं, हम सच बता रहे हैं। खैर, आप जैसे चाहेंगे वैसे कर लेंगे। अब बहुत इसको देखिए, प्लास्टिक फाइल ये वो बहुत खर्चा मत करिएगा, सहज सिंपल रहने दीजिए। अब ये तो आप लोग के नाते हम कह नहीं रहे कि ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए, नहीं तो हमारी वेबसाइट पर तो सब ऑनलाइन होता है। हम तो बहुत साल बाद ये ऐसा वाला पन्ने वाला लेंगे असाइनमेंट, नहीं तो सब ऑनलाइन ही हो जाता है। ऑनलाइन सबमिशन का है फाइल हमारे ऑप्शन, अपना सॉफ्टवेयर बनाइए, वर्ड में फाइल बनाइए और अपलोड कर दीजिए, हमारे पास आ जाती है, बस हो गया, हम ऑनलाइन देख लेंगे कंप्यूटर पे। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे ही दीजिए जैसे आप देना चाहते हैं। ठीक है, डन। अच्छा, अब इसके बाद अगली बात है फ्यूचर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अगला जो अभी भविष्य का इंटरनेट हो उसमें क्या बात हो। ठीक है, तो दोस्तों क्या समस्याएं हैं आज वाले इंटरनेट में जिसकी वजह से हमें कुछ नए भविष्य का इंटरनेट भी देखना पड़ रहा है? कोई समस्या होगी तभी तो हम भविष्य के इंटरनेट की ज़रूरत महसूस करेंगे। ठीक है, तो क्या समस्याएं हैं? पहली है बैंडविड्थ लिमिटेशन, बैंडविड्थ की सीमा। ठीक है, माने डेटा ले जाने की सीमा। ठीक, आप भी देखते स्लो हो गया, 4G भी नहीं चल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, एक सीमा। दूसरा सेवा की गुणवत्ता की सीमा, सेवा की गुणवत्ता की सीमा। ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाती है। तीसरी बात है ये नेटवर्क आर्किटेक्चर लिमिटेशन, माने तंत्र आर्किटेक्चर की सीमा, तंत्र आर्किटेक्चर की सीमा। ठीक है, और चौथी बात है वायर्ड इंटरनेट, माने तारों पर आधारित इंटरनेट, तारों पर आधारित इंटरनेट, ये इसकी सीमा है। ठीक है, तो अब नया इंटरनेट, इंटरनेट 2 बनाया जा रहा है, इसको मानते हैं कि इंटरनेट 1 है, इंटरनेट 2 बनाया जा रहा है, और उसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? बहुत तीव्र गति से डेटा उपलब्ध कराना, पहली बात तीव्र गति से डेटा उपलब्ध कराना। दूसरी बात, इंटरनेट पर अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराना, इंटरनेट पर अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराना, क्रांतिकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना, माने जो अभी तक हुआ ही नहीं कभी वो भी इंटरनेट पर होने लगे। ठीक है, जैसे हमारी बड़ी दीदी अभी गई थी वहाँ अमेरिका, भांजी हमारी वहीं रहती है, तो बता रही थी कि वहाँ टेलीविज़न नहीं है, भैया वहाँ टेलीविज़न नहीं होता है घर में। हमने कहा टेलीविज़न ही नहीं होता, तो कैसे दीदी देखती थी? बोले वो इतना तेज़ इंटरनेट आता है कि सब मोबाइल पर टैबलेट पर सब वही जो चाहिए चैनल देखिए, इतना सस्ता है इंटरनेट और इतना तेज से आता है कि सब मोबाइल पर देख लेते हैं, टैबलेट पर देख लेते हैं, कंप्यूटर पर देख लेते हैं, इंटरनेट टीवी लगाने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, ये है क्रांतिकारी सुविधाएं, जिनको कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो जाएगा वैसा होने लगेगा। और तीसरी बात है कि कि वितरित एवं सामूहिक उपयोग, वितरित एवं सामूहिक उपयोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बहुत बढ़िया इंटरनेट चलने लगे, इंटरनेट टू, तो हम लोगों की जो क्लास है वो ऑनलाइन होने लगे। हम अपना घर में रहें या कमरे में रहें और एक तो लैपटॉप खोल लें, उसी में कैमरा वैमरा लगे रहे, सब हाँ भाई सब आ गए, चलो वहाँ पर चलो बच्चों पढ़ाई शुरू कर दें। आप लोग भी सब अपना मोबाइल पे लैपटॉप पे रहें, व्हाट्सएप टाइप का, तो कोई भी पूछ रहा है, सबको क्लास भी दिख रही है, सबको एक दूसरे दिख भी जा रहे हैं, हाँ हाँ वो कले साहब मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ भाई पूछो, उसको ऑन कर दिया, सब लोगों ने देखना शुरू कर दिया, तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएंगे। ऐसा बच्चों आज भी हो रहा है, अभी हम लोग हिंदुस्तान में उतना नहीं समझ पाते हैं लेकिन ऐसा हो रहा है। आप लोगों को अभी हो सकता है अविश्वसनीय लगे लेकिन ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसके लिए हमें नया इंटरनेट चाहिए। इसमें कुछ संगठन हैं जो अपना काम कर रहे हैं, जिसमें से एक संगठन है ये GENI, ग्लोबल एनवायरनमेंट फॉर नेटवर्क इनोवेशंस, इसको लिख लीजिए, ग्लोबल एनवायरनमेंट फॉर नेटवर्क इनोवेशंस। ग्लोबल एनवायरनमेंट फॉर नेटवर्क इनोवेशंस, ठीक है। अब यहां एक चीज हमें, जो फ्यूचर का इंटरनेट है उसमें एक चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, वो क्या महत्वपूर्ण हो जाती है कि फर्स्ट माइल और लास्ट माइल सर्विस कौन देगा। अब आइए इसको समझते हैं कि फर्स्ट माइल और लास्ट माइल क्या है, ठीक है। देखिए, जो उपभोक्ता तक सेवा पहुंचा रहा है उसको बच्चों कहते हैं लास्ट माइल। क्या बताया, किसको कहते हैं लास्ट माइल? जो उपभोक्ता तक सर्विस सेवा पहुंचा रहा है। आप कौन है? उपभोक्ता। तो आप तक सेवा कौन पहुंचा रहा है? अच्छा, तो आपका लास्ट माइल कौन है? हाँ? कौन है बेटा, कौन ये इंटरनेट की सुविधा आपको दे रहा है? आपके पास मोबाइल है? कौन सर्विस प्रोवाइडर है? अरे किसका कनेक्शन है बाबू? जियो का है। तो आपका लास्ट माइल सर्विस प्रोवाइडर हो गया, ठीक है। अब क्या जियो ही पूरी दुनिया में नेटवर्क चला रहा होगा? नहीं, जियो भी कहीं ना कहीं से कनेक्टिविटी लेगा कि नहीं लेगा। जिससे भी जियो लेगा, हो सकता है वो भी किसी और से ले रहा हो कि नहीं, हो सकता है, हो सकता है। तो जिससे जियो ले रहा है वह भी अगर किसी से ले रहा है, तो ये बात हम समझ सकते हैं कि आखिर में आखिर कोई तो इस सेवा को बना रहा होगा कि नहीं बना रहा होगा। जो इस सेवा को आखिर में बना रहा होगा उसको कहेंगे लास्ट माइल। क्या कहेंगे? फर्स्ट माइल कौन है? जो आपको सेवा दे रहा है। और लास्ट माइल कौन है? जो इस सेवा को वास्तव में बना रहा है, यानी बैकबोन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो दो स्तरों पर कार्य की आवश्यकता हो जा रही है इंटरनेट टू में, कि फर्स्ट माइल कौन देगा और लास्ट माइल कौन देगा। इन दोनों भी पर काम लगातार चल रहा है। तो अब इसको हम कहते हैं कि ये आधुनिक इंटरनेट हमें मिल पाएगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने फ्यूचर ऑफ इंटरनेट तक की बात आज कर ली है। अब हम लोग कब मिलेंगे? कल नहीं मिलेंगे, कल हम छुट्टी पर हैं, अगले बृहस्पतिवार को मिलेंगे। अगले बृहस्पतिवार को आप हमें असाइनमेंट भी देंगे और हम इस क्लास की आगे की बात भी करेंगे, ठीक है।